प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 23 अप्रैल 2019 है और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि कल जो मैंने आपको एक जैन गुरु की कहानी सुनाई थी या यूं कह लीजिए कि एक सच्ची घटना सुनाई थी उस पर आप सबने बहुत सी प्रतिक्रियाएं भेजी हैं और उससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि आप सबके जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सत्य के बहुत निकट हैं। ये बहुत बड़ी बात है। यह इसलिए बड़ी बात है क्योंकि इससे यह बात कहीं न कहीं तो जाहिर होती है ही है फ्रेंड्स कि आप लोगों की समझ अब दूसरों की तुलना में, मतलब ये मेरे अपने विचार हैं कि जीवन को लेकर के बेहतर होते चले जा रहे हैं और इससे बड़ा अवार्ड मेरे लिए और दूसरा क्या हो सकता है। तो एक बार फिर मेरी ओर से बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद और आभार। जब मैं प्रतिक्रियाएं पढ़ रहा था तो उसी में मुझे कुछ दूसरी तरह की प्रतिक्रियाएं भी मिली और मुझे मालूम था कि उस तरह की प्रतिक्रियाएं आनी स्वाभाविक है और उन्हीं प्रतिक्रियाओं को आधार बनाकर मैं आज कल की ही बात में कुछ और बातें ऐड करना चाहूंगा। जैसे स्वाभाविक तौर पर कुछ श्रोताओं ने यह प्रश्न पूछा, तो सर क्या इसका मतलब यह हुआ कि अगर अन्याय भी हमारे प्रति हो रहा है तो हम चुप रहें और अगर हम चुप रहते हैं तो फिर अन्याय खत्म कैसा होगा, कैसे होगा। इस तरह की बातें उन्होंने कही जिस तरह से वो जैन संत के ऊपर आरोप लगाया गया लेकिन वे शांत बने रहे, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो क्या हम भी ऐसा ही करें? मैं इस बात को मित्रों यहां स्पष्ट करना चाहूंगा और मैं समझता हूं कि यह बहुत ही व्यावहारिक प्रश्न है। देखिए जब मैं आपको जो कहानी, अब मेरे मुंह से कहानी निकलती हालांकि वो सच्ची घटना है, जो मैं आपको घटना सुना रहा था वो घटना एक संत से जुड़ी हुई घटना थी, है ना। यानी कि वह जीवन के उस चरण पर पहुंचे हुए व्यक्ति हैं जो संत हैं कि जिनके ऊपर अब जीवन की बाहरी घटनाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यानी कि वे अब समाज की जो हमारी मुख्य धारा है जिसमें हम आप सब लोग हैं वो उस मुख्य धारा के हिस्से नहीं है, है ना। वो मुख्य धारा से हट करके एक दूसरे क्षेत्र में चले गए हैं और उन्होंने आध्यात्मिकता की एक बहुत ऊंचाई को हासिल कर लिया है, हम सब उसमें नहीं है। अब आप देखें कि जब हम आध्यात्मिकता की ऊंचाई को हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी बात जरूरी होती है। यहां पहले मैं यह स्पष्ट कर दूं और फिर मैं जीवन के क्षेत्र में आऊंगा क्योंकि वही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मित्रों गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम आप जानते ही हैं, उन्होंने अपनी अंतिम रचना लिखी, ऑलमोस्ट अंतिम है, विनय पत्रिका। विनय पत्रिका का मतलब है कि वो भगवान राम को एक चिट्ठी भेज दे रहे हैं। पत्रिका का मतलब यहां लेटर से है, चिट्ठी है। और वो चिट्ठी मतलब वो काव्य के रूप में ही उन्होंने लिखी है, उसमें बहुत सारे दोहे हैं और वो चिट्ठी हनुमान को सौंपते हैं कि तुम मेरी यह पत्रिका मेरे प्रभु श्री राम तक पहुंचा दो, राइट। उसी में देखिए एक दोहा है, वो क्या है, दोहा तो नहीं कहना चाहिए, वो लिखते हैं कबहू कहौ यह रहनी रहोंगो। देखिए अवधि भाषा है लेकिन आप समझ जाएंगे, कबहू कहौ यह रहनी रहोंगो। वो भगवान श्री राम से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु श्री राम, वह दिन कब आएगा जब मैं इस तरीके से रह पाऊंगा, कबहू कहौ यह रहनी रहोंगो, जब मैं इस तरीके से रह पाऊंगा। किस तरीके से, वो फिर तरीका बताते हैं कि जथा लाभ संतोष सदा काहू से कछु न चाहूंगो, कबहू कहूं यह रहनी रहूंगो, जथा लाभ जो भी मुझे मिल जाएगा, यहां लाभ का मतलब कोई बिजनेस से नहीं है, जो कुछ भी मुझे मिल जाएगा, जथा लाभ संतोष सदा, मुझे उसी में संतोष की प्राप्ति होगी और काहू से कछु न चाहूंगो और मैं किसी से किसी भी प्रकार के लाभ की इच्छा नहीं रखूंगा, मतलब मुझे किसी से कोई लाभ प्राप्त करने की भावना मेरे मन में उठेगी ही नहीं, कब हूं खाऊ यह रहूंगो। इसका मतलब यह हुआ कि थोड़ा सा हम आगे जाकर के इसके बारे में सोचते हैं कि जो भी मुझे मिल जाएगा वह मुझे स्वीकार्य होगा। अब आप देखिए कि तुलसीदास इतने बड़े संत हैं, रामचरितमानस जैसा महान ग्रंथ वो लिख चुके हैं, इसके बावजूद वो अपने लिए क्या कह रहे हैं कि मैं संत स्वभाव को ग्रहण नहीं कर सका हूं, मतलब मेरे मन में अभी भी ऊंच नीच उठा पटक मची हुई है, मची हुई है ना अंदर में, हम उस जैन संत में दिसंत में देखते हैं कि वह उठापटक खत्म हो गई है, शांत हो गई है, यानी कि उन जैन संत ने उस स्थिति को प्राप्त कर लिया है जिस स्थिति को प्राप्त करने की छटपटाहट अभी गोस्वामी तुलसीदास जी के मन में है। ठीक है, अब हम इसके दूसरे पक्ष में आते हैं, जीवन में क्या है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी फिलॉसफी है और मुझे लगता है कि इस पर बहुत विस्तार से बात की जानी चाहिए, कभी हो सका तो मैं आप सबसे बात करूंगा कि देखिए हमारे जीवन में ये बात महत्वपूर्ण नहीं है, ये बात ज्यादा मायने नहीं रखती है कि घटनाएं क्या घटित हो रही हैं। घटनाएं तो घटित होंगी ही, घटनाओं को आप घटित होने से नहीं रोक सकते। हाँ, उन पर थोड़ा सा आप नियंत्रण रख सकते हैं, थोड़े से उनके स्वरूप को बदल सकते हैं जिन घटनाओं में आप शामिल हैं। जैसे मान लीजिए कि कहीं दो बात किसी बात पर बहस हो गई, तो अब बहस किसी भी सीमा तक बढ़ सकती, मार काट तक आ सकती है, लेकिन चूंकि उसमें हम शामिल हैं तो हम बहस को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, शांत रह करके उसे मोड़ दे सकते हैं। लेकिन हर घटना में हम शामिल नहीं होते, हमारे चारों तरफ जितनी घटनाएं घट रही हैं उन घटनाओं से हम विरत होते हैं, अलग होते हैं, लेकिन उनमें हम होते हैं क्योंकि उनका प्रभाव हम पर पड़ता है। यानी कि जो घटनाएं हैं वो तो घटित होंगी ही होंगी, हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम करें क्या, हम कर केवल ये सब सकते हैं कि वो जो घटनाएं घटित हो रही हैं उस पर जो हमारी प्रतिक्रिया होगी, जो हमारा रिएक्शन होगा, या यूं कह लीजिए कि उसका जो हम पर इंपैक्ट पड़ेगा, हम उस इंपैक्ट को प्रभावित कर सकते हैं, मतलब उस प्रभाव को प्रभावित कर सकते हैं। यह हमारे ऊपर है कि जो घटना घटी है उस घटना का किस तरह का प्रभाव हमारे अंतर मन पर पड़ता है। मुझे लगता है कि इस बारे में रामचरितमानस में जो भगवान राम का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है वो अद्भुत है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि राम जब वनवास को जाने लगे, अब आप देखिए, कल्पना करके देखिए, सुबह राज्याभिषेक होना है सुबह, और उसी सुबह राज्याभिषेक की जगह वे अब बकायदे गेरुआ वस्त्र पहनकर अपने भाई और अपनी पत्नी के साथ वनवास के लिए जा रहे हैं, और वो भी एक दो साल के लिए नहीं, 14 साल के लिए। यानी कि कहां राज्याभिषेक और कहां वनवास। उस समय तुलसीदास जी ने लिखा है कि राम के चेहरे को देख करके ऐसा लग रहा था, एकदम शांत चेहरा था, तो न तो राज्याभिषेक की घटना से उनके चेहरे में कोई परिवर्तन आया था और न ही अब जबकि वो वनवास के लिए जा रहे हैं उनके चेहरे पर कोई परिवर्तन दिखाई दे रहा है। वो बिल्कुल समभाव से मालूम पड़ते हैं, उनके चेहरे पर कोई उतार चढ़ाव नहीं है। यानी कि राज्याभिषेक की घटना जो इतनी उत्साहवर्धक थी, इतनी सुखद थी, और अब वनवास की घटना जो सच पूछे तो इतनी दुखद है। घटनाएं तो घट रही हैं, घटनाएं घट रही हैं, लेकिन अगर उनके मन पर उसका प्रभाव नहीं है तो स्वाभाविक है कि चेहरे पर उसका असर कैसे दिखाई देगा। हम तो चेहरे को ही देख करके अनुमान लगा सकते हैं। उन्होंने उन घटनाओं से अपने अंतर मन को विचलित होने नहीं दिया। सच पूछिए तो वो जो कथा थी जो हम लोगों ने कल सुनी थी उसका यही अर्थ है कि घटनाएं घटती रहेंगी, हम उसमें एक्शन भी करेंगे। राम देखिए एक्शन कर रहे हैं, चुपचाप नहीं है, उससे विलग नहीं है, वो तो सोसाइटी के पार्ट है ना, एक्शन में है, लेकिन बिना उससे प्रभावित दुष्प्रभावित हुए ही। यह उसका मुझे लगता है कि जीवन के संदर्भ में सबसे अच्छा संदेश है। तो दोस्तों, इसी के साथ ही आज की बात मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा और आप सबसे इजाजत भी चाहूंगा। नमस्कार।